السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. كشف المحجوب. حضرت پیر علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب، اس کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں. آج کے سبق میں شیخ نے تذکرہ فرمایا حضرت ابو محمد عبداللہ تبع تابعین میں سے، پرہیزکاری، تقوی کے راستے پر چلنے والے، زہد و ورا میں امت کے یحییٰ، اور حضرت ابو عبداللہ بن خبیق رحم اللہ، دنیا سے بے تعلق، تمام حالات کامل، پرہیز گار صوفیہ کرام میں شمار. آپ کی روایت کردہ سب احادیث صحیح، عالی مرتبت، فقہ معرفت، حقیقت میں امام سوری رحم اللہ کے پیروکار تھے. شاگرد اور اصحاب کو دیکھا، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا. آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی زندگی میں حقیقی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے، اسے اپنے دل میں تمہ کو جمع نہ کیا جائے، وہ سختی و بال سے آزاد ہو جائے. اس لیے کہ لالچی آدمی کے جذبات لالچ کی وجہ سے مردہ ہو جاتے ہیں. دل میں لالچ کی مثال ایسی ہے جیسے دل پر مہر لگی، اور مہر لگا ہوا دل لا محالہ مردہ ہوتا ہے. خوش بخت ہے وہ دل کے ما سوا اللہ سے مردہ اور اللہ جل شانہ کے ساتھ زندہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے ایک عزت اور ایک ذلت پیدا کی ہے. اپنے ذکر کو دل کی عزت اور لالچ کو اس کی ذلت بنا دیا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے دلوں کو اپنے ذکر کا مسکن بنا دیا، نفس کی صحبت کے بعد شہوات کا مسکن بن جائے، اور شہوات کو دلوں سے یا تو بے قرار کرنے والا خوف ہی مٹا سکتا ہے، یا بے آرام کرنے والا شوق. شوق اور خوف ایمان کے دو ستون ہیں. جب دل ایمان کا محل ہو تو اس کے ساتھ قناعت، ذکر الہی، نہ کہ طمع اور غفلت. پس مومن کا دل لالچی اور شہوات کا تابع نہیں ہوتا، کیونکہ طمع اور خواہش نفس وحشت کا نتیجہ، اور وحشت زندہ دلوں کو ایمان کی کچھ خبر نہیں ہوتی. ایمان کو اللہ جل شان ہونے انس ایمان کو اللہ جل شانہ سے انس ہوتا ہے، اور غیر سے وحشت ہوتی ہے. شیخ ابو عبداللہ تبع تابعین میں سے ہیں. تبع تابعین ایسی ہستی جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، وہ ہیں تابعین. اور جنہوں نے ان تابعین کی زیارت کی، صحبت اختیار کی، وہ ہیں تبع تابعین. اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے، وہ ہے دل کا سوال، جسے لالچ کہتے ہیں. دل کا سوال، اشراف نفس، دل کا سوال. اس میں فلاں چیز اس کے پاس ہے، یہ میرے پاس ہو جائے، یہ مجھے دے دے، دل کا سوال ہے. فلاں کھانا، گھڑی، موبائل، کوئی چیز عمدہ، یہ مجھے مل جائے، مجھے دے دے، دل کا سوال ہے. دل کا سوال. دو سوالوں سے بچنا ہے. بقول حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے. ایک زبان کا سوال اور ایک دل کا سوال. اللہ اکبر. مولانا شیخ العزیز مولانا محمد شریف کشمیری صاحب تھے خیر المدارس میں, تو ان کی بیٹی کے نکاح میں میں شامل تھا. ہمارے مفتی محمد احمد صاحب ابھی فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ, تو میں گیا وہاں. ان کی بات مجھے یاد آئی, فرمانے لگے چندہ کرنا نبی کی سنت, چندہ دینا صحابہ کی سنت. حضور چندہ کرتے تھے غزوات میں, کون ہے اتنے گھوڑے دے گا, کون ہے اتنی تلواریں دے گا, کون ہے اتنا درہم دے گا, کون ہے اتنا دینار دے گا. پھر آگے ایک بات بڑی قیمتی فرمائی, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. بڑوں کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے اور بڑوں کی باتوں میں بڑی قیمت ہوتی ہے. فرمانے لگے چندہ وہی کرے جس کا دل کا دن رات دھندا اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا. یہ دھندا میں نے درمیان میں شامل کیا ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ جس کا دل دن رات اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو, پھر لذتیں چیزیں اسے کوئی اثر نہیں دیں گی, ورنہ وہ مخلوق کے تمے میں مبتلا ہو جائے گا, لالچ میں مبتلا ہو جائے گا, غرض میں مبتلا ہو جائے گا. ایک ڈرائیور نے مجھے ایک بات بتائی, ٹیکسی ڈرائیور تھا. میں ایک جگہ گیا تو میاں والی گیا تو وہاں ایک گاڑی لی, کلٹس گاڑی تھی نئی اچھی. میں نے کب سنا ہے کہ پرانی گاڑی سیاست اور نشہ جس سے دشمنی کرنی اس کو دے دو, تو پرانی گاڑی نہ ہو. سن نہیں لیا, جس سے دشمنی کرنی ہو اس کو پرانی گاڑی, سیاست اور نشہ. میں نئی گاڑی لی, گاڑی اسے طے کیا فلاں جگہ جانا فلاں جگہ جانا فلاں جگہ جانا. اس نے کہا جی میں اتنے پیسے لوں گا پیٹرول آپ کا. میں کہنا سب کچھ تیرا لمسم بتا. خیر ہو گیا. اس نے مجھے کچھ باتیں بتائی, میں نے بیٹھتے ہی چیڑ چاڑ شروع کر دی. اللہ کی محبت کی کچھ باتیں ایسی تھوڑی سی, اور جو باتیں میں کر رہا تھا اس کو چھٹے لگ رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے جی بہت سے پیر ہیں جن کی میں ساتھ مہینوں رہتا ہوں. کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں میرے ساتھ, ہم اندرون سندھ سندھ کراچی یہ جگہ جاتے ہیں اور وہ بہت چندہ کرتے ہیں, جبکہ ان پیروں کا پیچھے نہ کوئی آستانہ ہے نہ کوئی لنگر خانہ ہے, کچھ بھی نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اس تمی کی وجہ سے, اس لالچ کی وجہ سے اللہ نے ان کے گھر میں بیماریاں, حادثے, تکلیفیں, پریشانیاں, مشکلات. کہا کہ کئی پیر ایسے ہیں میرے دوست بن گئے, مہینوں جو ساتھ رہے, مہینوں جو ساتھ رہے. حتیٰ کہ ہاں پیر صاحب گاڑی کھڑی کر دیتے تھے, فوراً کہتے تھے پیٹرول ختم ہو گیا ہے, جبکہ جیب میں ہمارے ہزاروں روپے ہوتے تھے. پیٹرول نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے, بھروا دیں. چلے وہ پیسے دیتے تھے, کہ نہیں پیسے نہیں لینے, پیٹرول بھروا دیں. اس کو اعتبار آ جاتا تھا, کوئی پیسے تو نہیں لیتا ہی. میں نے پوچھا کوئی اور بات؟ کہا کچھ لوگ میرے ساتھ آگے نہیں بیٹھتے تھے, حادثہ ہو جائے گا. ایک دفعہ گاڑی آگے سے لگ گئی. کچھ لوگ پیچھے نہیں بیٹھتے تھے, پیچھے سے کوئی بندہ آ کے مار دے گا. ایک دفعہ گاڑی پیچھے سے لگ گئی. کچھ دائیں والی کھڑکی بائیں نہیں بیٹھتے, درمیان میں بیٹھ رہے تھے, ادھر سے گاڑی لگی, ادھر سے بھی لگ گئی, ادھر سے بھی لگ گئی. زندگی حادثوں کا نام ہے. پھر کہنے لگے ایک صاحب ہیں, ان کو میں لے جاتا ہوں رمضان المبارک میں, वो रमजान मुबारक में वहां खत्म पढ़ते हैं लोगों का। कहा इतनी तेजी से पढ़ते हैं, फैसलाबाद से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर कराची के सारे स्टेशन गिनवाते हैं, उनको स्टेशन याद है, सफर कर कर करके शहर में स्टेशन गिनवाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। वो कहते हैं कि शायद सुभान अल्लाह, वो अरबी था ना, नाराज हो गया तो उसने गालियां दी, तो यहाँ का बंदा अकीदत वाला था, रोने लगा, सुभान अल्लाह इनको गुस्सा आता है तो कुरान पढ़ते हैं, इनको गुस्सा आता है तो कुरान पढ़ते हैं, वो तो अरबी में गालियां दे रहा था। जिंदगी में अगर सवाल के दरवाजे खुल गए, लालच के दरवाजे खुल गए, सवाल के, जिसने हजरत बनौरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हमारे बड़ों में से थे, पूछा हजरत सवाल के दरवाजे कब खुलते हैं, फरमाया जब इंसान ख्वाहिशात पे आता है और जरूरियात से निकलता है, फिर ख्वाहिश सवाल के दरवाजे खुलते हैं। तो उस दिन की बात है, एक बंदे के फक्र और फाके के बारे में सोच रहा था, उस खानदान के दो बेटे हैं, मेरी बात को जरा गौर से और जरा आंखें खोल के सुनिएगा, दो बेटे, एक बेटा कुछ कुछ खुशहाल है, गुजारा हो रहा, और एक बेटा ऐसा है उसके घर के भी कारोबार के भी रिस्क के भी हालात आखिरी दर्जे के, कसमा पुरुष के। मैं उसकी कहानी आपके सामने अगर बयान करूं आप रोने लग जाएंगे, वो इतनी कसमा पुरुषी में है, 20 साल से जो उसे मैं देख रहा हूं अभी तक वो कसमा पुरुषी में है, अभी भी डोर टू डोर घर टू घर वो रिस्क तलाश करता है, भीख नहीं मांगता, उसके अंदर मांगने का मिजाज नहीं, भीख मांगने का मिजाज नहीं, परेशान है, परेशान है जिंदगी के हर शोबे में। मैं से बैठा सोच रहा था, सोचते सोचते उसके लिए मांग रहा था, अल्लाह पाक तो उसके दिन खुशहाली में उसके घर के मसाइल, अल्लाह तो गैब से उसकी मदद कर दो। अचानक मुझे एक आवाज आई, अल्लाह के इल्म में से इल्म मिला, क्यों, वही सिर्फ नबी पे आती है, खत्म नबूवत के सदके वही का दरवाजा बंद हो गया। एक मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से इल्म आया, दो चीजें इस बंदे को खा गई हैं और हमेशा इसका पीछा करेंगी, इसकी वालिद और वालदा में सवाल और उधार लेने का मिजाज है, और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा हर किसी से उधार मांगेंगे, हर किसी से सवाल करेंगे। एक दूसरा, इसकी वालदा में ना शुक्रिया और बददुआओं का मिजाज बहुत से, इतनी बददुआएं, इतनी बददुआएं। अब दोनों बेटों में इस बेटे से मोहब्बत मां बाप को आखिरी दर्जे की है, वो जो बददुआओं की बला है वो लौट के इसी बेटे पे आ रही है, लौट के इसी बेटे पे आ रही है। कुछ जाके उन्हें ये बात समझाए, ना बेटे को समझ आएगी ना माँ बाप को समझ आएगी, समझ नहीं आएगी क्यों दरवाजे बंद हैं। और वो जो सवाल के दरवाजे खोले हैं उसने बरकत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, बरकत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, खैर के दरवाजे बंद कर दिए, वसत के दरवाजे बंद कर दिए। क्या ये लोग हैं मौलिज हैं जिनके हाथ हमारी नब्जों पे हैं, के ख्याल करना, सवाल का दरवाजा न खोलना, लालच का दरवाजा न खोलना, तमे का दरवाजा न खोलना, अल्लाह के खजानों से मांगने वाला मिजाज बना, अल्लाह के खजानों से मांगने वाला मिजाज बना, नफिल के जरिए अमाल के जरिए अल्लाह के खजानों से भीख मांग के अल्लाह से मांगने का मिजाज बनाना। अजीब बात बताऊं, जो सवाल के दरवाजे खोलता है, कर्जे के दरवाजे खोलता है, सवाल के दरवाजे खोलता है, एक झंडा है उसके घर पे लग जाता है, इंसान और जिन्नात के अलावा कोई नहीं देख सकता। रिवायात में आता है इंसान और जिन्नात के सामने कोई नहीं देख सकता, और उस झंडे पे एक लफ्ज लिखा होता है, फक्र 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 फक्र, जा तेरी नस्लों में फक्र, गुर्बत तंगदस्ती फकीरी मोहताजी हमेशा रहेगी। तो कभी उसको फक्र को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं कर सकता। फक्र फक्र फक्र, अपनी जिंदगी से कभी फक्र और गुर्बत और तंगदस्ती को जुदा नहीं कर सकता। फक्र झंडा लगा दिया जाता। मैं पढ़ता था तो एक घर था, उस घर के करीब मेरा कयाम था। रोज बंदे आके उस घर का दरवाजा खटखटाते थे। उनके बेटे का नाम तो कुछ और था, मोहब्बत में नमी कहते थे, नमी। मैंने एक दफा नमी से पूछा, मैं कहा नमी ये लोग क्या खटखटाते हैं? इतना अब्बा जी और अम्मी ना हर किसी से उधार मांगते हैं, फिर देने का प्रोग्राम नहीं होता। अब्बा जी मुझे कहते हैं जाके कहो कोई नहीं बैठा। उनके उधार के दो चीजें मैंने देखी आंखों से, एक रूम कूलर नहीं होता जिसमें खसें पड़ी हुई होती हैं, उसका एक बिजली का कनेक्शन तार टूट गई, कहने लगे खराब हो गया है, 3-4 महीने गर्मियों के धूप में उसे फेंक दिया, वो गल गया। पेडेस्टल फैन था, ये मैं आंखों देख के बातें बता रहा हूं, उसकी कोई गरारी कोई चीज खराब हुई, उसके पर लगने लगे आगे जो ग्रिल होती है उससे, तो जहरे पर ढीले कोई हो गए होंगे, खराब हो गया इसको फेंकता हूं। बच्चों के चलाने का साइकिल फैंसी लाजवाब था, उसकी जो हवा निकली उसे गर्मी में फेंक दिया, बारिश और गर्मी ने बर्बाद कर दिया। तो पैसे तो उधार के सवाल के थे, लालच के थे। एक बात बताओ, कहने लगे फला खानदान ने गुर्बत से खुदकुशी कर ली है, गुर्बत से फलां बंदे ने यह कर दी है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ख्वाहिशात बढ़ती जा रही है। इस फकीर की गहरी बात को सोच। मेरे उस दिन एक करीबी मेरे मुखलिस ने कहा, इस हुकूमत की वजह से गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। मैंने कहा होगी, लेकिन ख्वाहिशात ने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, अब सोच नहीं सकते। मैं उस दिन अपनी बेगम के साथ बैठा था तो एक जिन की कहानी सुना रहा था, जिन की कहानी। वाक्य है एक बंदे में जिन की हाजिरी होती, क्योंकि मैं ना जिन्नात का शहनशाह नहीं हूं, ना मेरे ऊपर कोई जिन्नात की हाजिरियां, ना मेरे जिन कुत्ते हैं, ना मेरे अपने बारे में कोई विलायत का दावा है। तो जिन्नात की कहानियां मैं सुनता सुनाता रहता हूं। जिन ने बहुत सी बातें बताई, बहुत सी बातें, नेक जिन था, किसी पे था, पुरानी सी बात है, उसमें एक बात यह भी थी, शादियों और फंक्शन के नाम पे, तकरीबात के नाम पे, जब खवातीन की ख्वाहिशात जेवर जूतियां और कपड़ों में इतनी बढ़ेंगी कि मर्द को खाली कर देंगी या परेशान कर देंगी। इसकी तस्दीक उस दिन मैं गाड़ियां बैठा था, एक साहब है वो शाही कपड़े सीते हैं, उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया, कोई भी शादी हो हमारे पास 10 20 30 लाख 1 करोड़ रुपए के भी खवातीन के कपड़े सिए गए, मर्द हमेशा या पुराना पहन लेता है या कोई जरूरत पूरी कर लेता है, शाही कपड़े सीते हैं, उनका एक अपना नाम है। उस जिन ने इतनी खतरनाक बातें बताई, ये मैं लालच और ख्वाहिश की बात कर रहा हूं जो आज कशफुल माचू में बताया, कभी बताऊं तो फिर वो जिन की बातें ही बताना शुरू कर दूंगा। जहां मुझे असली जिन मिल जाए, एक वो जिन न हो जो ख्वातीन वाला होता है, माई अपने मिजाज के मुताबिक कहे मुझे चीजों का असर है। उस दिन माई आई मेरे पास, अभी मैं सुबह के वक्त मुलाकातें करता हूं, या दो हफ्ता एक पहले शोर सुना मैंने, अंदर शोर आ रहा था, तो मैंने मेरे पास आई तो आते ही शोर है, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम कौन हो। अच्छा, मां ने पकड़ा हुआ, बाप ने पकड़ा हुआ, भाई साथ है। मैंने कहा छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। उसे मैंने दो तीन बातें कही, उसके बाद उसकी कैफियत बहुत बेहतर हो गई। वो क्या बातें थी मैं क्या बताऊं, कोई इसमें आजम नहीं था, कोई इंसान बनाने की बातें थी, इसमें आजम नहीं था। उसकी तबीयत में बहुत बहाली आ गई। वो जिन नहीं जो खवातीन वाला जिन है, एक माई बूढ़ी मुझे कहने लगे, मेरी बख्शिश हो सकती है? कैसे? कहने लगे मेरी शादी होके गई सास सख्त थी, और घर में ज्वाइंट फैमिली बहुत ज्यादा थी, और शौहर के दिन रात की ड्यूटी थी, और फिर मैंने ना अपने ऊपर जिन मुसल्लत कर लिया, आवाजें निकालती थी। हमारी एक दादी थी, उसकी बहन थी, वो भी ऐसे करती थी, मुझे याद आया, वो ऐसे करती थी तो निजातुल आशिकीन हो जाती थी, यौम निजात मनाती थी। कहने लगे फिर मुझे खाना खिलाते थे, माल खिलाते थे, मुझे फलां दरबार पे ले जाओ, मुझे फलां जगह ले जाओ, फलां जगह ले जाओ, और ये होता था, दौरे होते थे। एक तो मैं घर वालों की खिदमत करवाती थी, करने से बच गई, शौहर की जो ड्यूटी होती थी वो भी, और जो सास की सख्ती होती थी वो भी, बल्कि सास को मैंने इंसान बना के रख दिया। कहने लगे जब दर्श में आना शुरू हुई तो एहसास हुआ, सास को मैंने बेइज्जत करते करते आखिर सास मर गई, और शोहर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, बीमारियों, तकलीफों में मुबतला हो गया, वो जो उसकी ड्यूटियां थी वो वैसी खत्म हो गई, वो खुद बीमारियों में मुबतला हो गया, और औलाद जवान हो गई, और एहसास हुआ मैंने अपने ऊपर क्या मुसल्लत रखा, और कहां घर की जिंदगी का सारा चार्म, जिंदगी की सारी खुशियां सिर्फ और सिर्फ मुझे काम ना करना पड़े, और सिर्फ मुझे अक्सर नहाना ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई खिदमत ना करनी पड़े। मैंने जिन बेहोशी और वावेले का सहारा लिया। ये हमारे बड़े नबाज हैं, इन नब्जों पे नजर रखते हैं। शेख अबू अब्दुल्ला ने जो बातें फरमाई हैं वो यही बातें हैं। हज़रत अली करम अल्लाह वजह करीम शहंशाह विलायत। फरमाते हैं तू मुस्तगनी हो जा उन चीजों से जो लोगों के पास है, अल्लाह तुझे इज्जत देगा। मुस्तगनी हो जा, लोगों के पास चीजें हैं ठीक है, उनके पास है, जामे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा, मेरे पास टूटी फूटी जो दुनिया है यही सब कुछ है। मेरी नजर लोगों की जेबों, लोगों के मालूम, लोगों की चीजों पे ना रहे, और मेरी नजर इस पे ना रहे कि आ कहां से रहा है। लोगों की जुस्तुजू में ही लगा हुआ है, तो में लगा हुआ है, दूरबीने लगा लगा के थक गया है कि माल चीजें कहां से आ रही हैं, आ कहां से रहा। अपनी तबीयत को संभाल के रखना, अपने मिजाज को संभाल के रखना, अपने पल पल को संभाल के रखना, संभाल के रखना। हमारे उस्ताद होते थे उस्ताद तुफैल सैद, तो जब रोज आते थे तो कहने लगे छोलों की प्लेट कौन खिलाएगा उनको, छोले की प्लेट कौन खिलाएगा, तो वो कहते मैं खिलाऊंगा। मेरा दोस्त है क्लास फेलो, आजकल वो अदाकार है, गुलूकार है, अदाकार है, वो सबसे आगे होता था। मुझे कहने लगा अरे तारिक रुपया काट, तूने आज तक पैसे नहीं दिए। उस्ताजी को फिर छोले की प्लेट दे देते थे, वो कहते थे वो नालायको ये क्या दिया तुमने, बस इतना लफ्ज कहते थे। उस्ताजी फिर छोले खाते थे, हम पीरियड में खेलते थे। हम खेलते थे और फिर उस्ताजी को लतीफे सुनाता था वो हमारा अदाकार अली उसका नाम था, और लतीफे सुनाता था, आवाजें निकालता था, वो शुरू से अदाकार था, उसके अंदर ठीक वो चीजें। जिंदगी में अगर बहुत बड़ी कामयाबियां पानी हैं तो फिर अपने दो चीजों पे, एक बद्दुआएं और मखलूक के शिकवे और नाशुक्री, इससे बचे, एक दरखास्त, और दूसरी चीज ये है लालच से बचे, लालच से बचे। फकीर तमा नहीं करता, मना नहीं करता और जमा नहीं करता, मैं गया मक्का मकरमा में एक दुर्वेश के पास, मुझसे कहने लगे पैसे ले जल्दी कर, पांच पांच सौ के मेरे पास, पांच सौ वहां की बड़ी करेंसी है सऊदीया की, रियाल के नोट थे, हेलो गए इसको पकड़ो, पकड़ के मेरी जेब से सारे निकाल दिए। मैं कह एक तो दे दे पांच सौ खर्चा है, क्या एक दे दिया। फिर मुझसे कहने लगे पता मैंने ऐसा क्यों किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक सहाबी ऐसे थे जिनसे मेरे हजूर की इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, मेरे हजूर उसके उसको कहते थे इसको पकड़ो और उसकी जेब से सब कुछ निकाल देते और वो खुश होता था। क्या होता था? जिंदगी की अदाओं में मिजाज नबूवत है। एक यह है कि मैं अपने मन को हर वक्त पढ़ता रहूं कि क्या मेरी तबीयत में लालच तमा गरज तो नहीं, क्या मैंने उधार के दरवाजे तो नहीं खोले हुए, सवाल के दरवाजे तो नहीं खोले हुए। ये दरवाजे उधार के सवाल के, मेरे हजरत रहमतुल्लाह ले अमूमी हदिया नहीं लेते थे, मुझे हुक्म फरमाते थे तारिक वो फलान चीज, मैं जी हजरत ठीक है, और मेरी अम्मा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे मुझे अपने हजरत के हदियों के लिए बड़े पैसे देती थी अम्मा। जब खुद कमाने वाला बना तो हजरत ही चले गए, या मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी थोड़ा सा क्लास में पोजीशन में आता था तो उसकी स्कॉलरशिप मिलती थी, पैसे मिलते थे, दो लोगों को मिलते थे, गरीबों को मिलते थे, एक जो आला नंबर ले उसको मिलते थे। तो वो पैसे सारे लाके हजरत की खिदमत में पेश करता था कि हजरत ये कबूल फरमाए, तो हजरत बगैर चुन चुना कबूल फरमाते थे, पर सबका कबूल नहीं फरमाते थे। बड़ों से एक बात सुनी है, किसी से लेके उसे करीब करो, किसी को दे के उसके करीब करो, और किसी से ना लेके उसे करीब करो। यही हिकमत बसीरत बड़ों के साथ चल के आती है, ये किताबों में नहीं आती है। बड़ों के साथ चल के आती है हिकमत बसीरत, और आती किसने है? खिदमत करते करते, खिदमत करते करते, खिदमत करते करते। क्यों? खिदमत हो और नागवारियां ना हो, खिदमत हो और चोटें ना हो, खिदमत हो और फुटबॉल ना बनाया जाए कि कोई कहीं से किक मारे, पाऊं मारे, कोई कहीं से मारे। खिदमत करते करते फिर अल्लाह राहें खोलता है और रास्ते खोलता है। खिदमत करते करते जो खिदमत में इस्तेकामत अख्तियार करता है, इस्तेकामत, नागवारियां आई राहें न छोड़ी, नागवारियां आई मंजिल न छोड़ी, मंजिल न छोड़ी। और एक खादिम था, खिदमत भी करता था, मुआवजा भी पाता था, बड़ा मुनासिब मुआवजा दिया जाता था। लंगर खाने में गया तो खाने का वक्त खत्म हो गया, लंगरी कहने लगा कि आप अपने मिजाज से चलते हैं, अब खाने का वक्त खत्म हो गया। उसको धक्का देके खुद रोटी पकाई, सालन खा लिया। उसने शिकायत की, बड़ों ने समझाया और गुस्सा करके कहते मैं नहीं यहां खिदमत करता, चला गया। यहां से प्लाट बनाए थे, मोटरसाइकिल बनाए थे, सब कुछ बनाया था, दो तीन भाई थे, लेकिन घर के कमाने वाला यही था, घर का बेहतरीन निजाम बनाया। फिर मुख्तलिफ काम किए, आखिर प्लाट लिए, बेचा, उसकी गाड़ी ले ली, वो भी ना हुई। फिर वो कोई लोडर ले लिया, वो भी ना हुआ। फिर फट्टों पे बैठता था सारा दिन, बेरोजगार फट्टे, उसका नाम है बेरोजगार फट्टे, उनपे बैठे बैठे। डेढ़ साल के बाद आया, कहने लगा जेब में पैसे नहीं थे, किराए के पैसे लाया हूं। मैंने एक बंदे से एक बात कही, आज आपको कह रहा हूं, ये मैं अपनी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूं। जिसको देखो ना कि गरीब है, उसमें तीन चीजें तलाश करो, गरीब है, तीन चीजें तलाश करें। मेरे आका कमली वाले फरमाते हैं हदीस में, गरीब मुतकब्बिर, अल्लाह की उस पर लानत है, लानत वाला कभी फल फूल नहीं सकता। गरीब हो मुतकब्बिर हो, मैं तो खुद खुंदकबाज हूं, हम इज्जतदार लोग हैं, ये पड़ा है तुम्हारा, नहीं हमें जरूरत। अक्सर गरीब मुतकब्बिर होगा, अक्सर गरीब। क्यों? हदीस सच्ची, मेरे कमली वाले का फरमान सच्चा। देख लो, अगर मुतकब्बिर है, मगरूर है, मिट मिट में चिढ़ जाता है, एक दूसरा सुस्त काहिल हड हराम है, वहां इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल, मेरे कमली वाले ने इससे पनाह मांगी है, कसल से, सुस्ती से, हड हरामी से। दो अलामतें, और तीसरी अलामत बदनीयत है। अगर कोई गरीब है तो उसमें ये तीन चीजें तलाश करो, थोड़ा सा वक्त लगता है, अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो कसम उठा के कह दो ये जन्नती है, अल्लाह थोड़ी सी दुनिया इसको दे दुनिया की लज्जतों से निकाल, आखरत हमेशा की लज्जतें इसे देना चाहते हैं, वरना ये मिलेंगे आपको लाखों में से कोई एक। गरीब हो तो उसमें तीन चीजें तलाश करो, तकब्बर, एक एक बात पे चढ़ जाना, सुस्ती, काहली, हठहरामी, तीसरी पत्नियति, वो किसी भी शक्ल में है। उसे पता है काम एक घंटे में होगा, पांच घंटे लगा देगा, उसे पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं करेगा। पत्नियति, अगर ये तीन चीजें हैं, कोई कहते हैं मेरे अंदर है, और ये अपने अंदर भी वही महसूस करेगा जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर ईमान नहीं होगा वो कहेगा ये हमारे पर इल्जाम लगाते हैं। अपनी दलीलें और खिदमतें बयान करेगा। एक बंदा ना पुठियां भींचता, गुस्से में मुंह से झाग निकालता जा रहा था, मुंह कर दूंगा, ये कर दूंगा। एक प्रवेश मिले साहिब नजर, क्या हुआ? उसमें मेरा मालिक मुझे तनख्वाह थोड़ी देता है, वक्त ज्यादा है और मेरा गुजारा नहीं होता, ये नहीं होता। आज जाके उससे बात करता हूं, आज वहां तेगो कफन बांधे हुए जाता हूं, उधर मेरे कत्ल में अब लाएंगे क्या? हजरत नासे घर आएंगे क्या? पर मुझे ये तो समझा दें कि समझाएंगे क्या? हजरत नासे घर आएंगे क्या? पर मुझे कोई ये तो समझा दे, पर समझाएंगे क्या? जख्म बढ़ने तलक नाखून न बढ़ाएंगे क्या? मेरे नाखून काट दे कि मैं जख्म छील लेता हूं, कहे उधर जख्म बढ़ेंगे उधर मेरे नाखून निकल आएंगे। क्या बात है? मालिक की तरफ जा रहा था, आज बात करता हूं, एक सहब नजर दरवेश मिले, इधर क्या बात है? कहने लगे बस ऐसे मेरे मालिक ने मेरे साथ किया। कहने लगे कर बताऊं मालदार होने का, ये बताएं मानेगा? जी आप तो वलिये कामिल हैं, आपकी न मान के कोई बर्बाद होऊंगा, पर मैं अपने अपने मालिक से कहे तीन महीने की मुझे तनख्वाह ना दे, तीन महीने मुफ्त काम कर। उसे सन्नाटा, आंखें पथरा गए। मैं कहता हूं मेरी इसी से गुजारा नहीं होता, वो दुर्वेश इसी को से भी फारिग कर रहे हैं। उसने जब ही हमने बात कर दिया, जी में आए तो मान लेना, वरना तेरी मर्जी है, पर अगर मान लेगा तो मालदार हो जाएगा। चलते चलते जी में आया, चलो किसी फकीर की देख मानते हैं। ओ जाके मालिक से कहने लगा जी मैं तीन माह की तनख्वाह नहीं लूंगा। मालिक भी हैरान हो, क्या कहते हैं? तीन माह की तनख्वाह नहीं लूंगा। उसने कहा बस नहीं लूंगा। तीन माह करता रहा, हालात और कमजोर हो गए, कसमा पुरसी बढ़ गई, खुद भी बीवी ने भी बच्चों ने सबर किया, तनख्वाह ना ली। तीन माह के बाद जब तनख्वाह ली, तनख्वाह तो वही थी जो आनी थी, अब उससे गुजारा शुरू हुआ घर का। उसमें रब ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। यहां एक बंदा बैठा है, हर दर्श में यहां बैठता है, यहां बैठता है इस जगह, आप मानेंगे उसकी 8,000 रुपए तनख्वाह है। मुझे कहने लगे मैंने सारे धोखे फरेब किए, सब कुछ किया, जब से तस्बीह खाने की नस्बत है मैंने, आपने एक सबक दिया था, बरकत मांग, बरकत मांग, बरकत मांग, बरकत मांग, पागल हो गया। अल्लाह से बरकत मांगी, 8,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, घर, बीवी, एक बच्चा है, वालिदैन है, आना जाना है, मेरा अल्लाह ऐसी बरकत देता है कि फिर भी बच जाता है। 8,000 रुपए तनख्वाह है, कौन मानेगा? बरकत। कुत्ती कितने बच्चे देती है, बकरी कितने बच्चे देती है, उसूलन तो कुत्ती की और कुत्तों के रेवड़ होने चाहिए। अल्लाह कसरत को मिटा देता है, अल्लाह बरकत को हमेशा सलामत रखता है। कसरत मिट जाती है। फिर जो रब ने उसके लिए खुशहाली के दरवाजे खोले, आहिस्ता आहिस्ता देखा तो काम बरकत की तरफ आ रहा। अब हैरान हुआ। इसलिए कहते हैं किसी फकीर की बात को बिन देखे, बिन सोचे, बिन समझे मान ले। दलील के साथ माना, देख के माना तो मजा क्या है। अनदेखे सौदे किए जाते हैं। 3 माह उसके गुजरे कैसे होंगे, कोई गुमान है किसी का? जिसके पहला हाथ, पहले ही हाथ तंग था, पहले ही हाथ उसका बेचारे का परेशान था, उसके 3 माह कैसे गुजरे होंगे? पर माना उसने। आया हजरत, अल्लाह ने हाथ कुशादा कर दिया और मजीद कुशाद भी बढ़ रही है। उसी तनख्वाह से गुजारा भी होता है, बच भी जाती है, आगे भी बढ़ रहा हूं। पर राज बताएं, राज क्या था? अब राज सुने जरा आंखें खोल के। पर मैं जिस तनख्वाह की तो खिदमत करता था, उस तनख्वाह में, उस खिदमत में डंडी मारता था और तुझे डंडा लगता था। डंडी मारोगे तो डंडा लगेगा। जिस तनख्वाह की तो खिदमत करता था, उसमें वक्त की डंडी, पैसों की डंडी, किसी भी शक्ल में, वो शक्लें होती हैं। काम जिम्मे लगाया था 5 मिनट का, मैंने 5 घंटों में, 2 घंटों में, एक अंदर जमीर कह रहा है कि तू ज्यादती कर रहा है, पर जमीर की आवाज को इसने दबा दिया और मार दिया। वो बेबरकती के फैसले होना शुरू हो गए। मैंने तुम्हें क्या किया? वो जो तूने मालिक के साथ खयानत की थी, तेरे सारे पैसे मैंने मालिक को लौटा दिए, अब तेरी खयानतों का सारा इजाला कर दिया और तेरा तराजू बराबर हो गया। जब तेरी खयानतें खत्म हो गईं, अब तू, तेरा जो माल आ रहा वो है बरकत वाला, और बरकत वाला कहीं जा नहीं सकता, और बरकत को कभी जवाल नहीं, और बरकत को हमेशा कमाल है, और बरकत नस्लों तक चलती है, और बरकत नस्लों तक जाती है। किसी ने पूछा, हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लाल शाबाज कलंदर कहते हैं, हजरत तवंगरी के राज बताए। तवंगरी के, फरमाया लालच न कर, पहला राज, जो आए उसमें से अल्लाह का हिस्सा निकाल, दूसरा राज, और अगर तुझे कहीं कोई मुश्किल पेश आए, परेशानी पेश आए, तो अपने मुर्शिद को अहवाल बताता रहा है कर, और खुल के बताता रहा कर, बताता रहा कर। फरमाया तो तेरी मदद न कर सकेंगे, लेकिन उनकी दुआएं तेरे पल पल को उठा के कहां पहुंच जाए। अपने अहवाल देता रहा कर, अपने हालात देता रहा कर। बाज लोग अपने अहवाल छुपाते हैं, अपने साथ ज्यादती करते हैं, कहने के बावजूद भी छुपाते हैं। हमारी जिंदगी में खुशहाल, एक बात अक्सर कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, है बस में नहीं, ना मेरे हर आपके बस में नहीं है, पर उसके रिजल्ट मिलते हैं। जरा कह रहा हूं और सुनिएगा, कह रहा हूं और सुनिएगा, अपनी नस्लों को फकीर, मंगता, तंग दस्त भिकारी गरीब छोड़ के ना जाना। आप कहेंगे ये हमारे कैसे बस में है, आप कहेंगे ये हमारे कैसे बस में है कि कितने अरबपति थे उनकी नस्लों को फकर गुर्बत में देखा और जितने गरीब थे वो अरबपति हो गए। मैं कहता हूं जो बस तेरा है वो कर दे, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। सबसे पहले ईमानदारी। मैंने उस दिन एक बंदे को लिखवा के सामने खड़ा किया, मुझसे कहने लगा खिदमत किस चीज का नाम है? वह सिर्फ दो चीजों का नाम है, ईमानदारी और एहसास, वक्त का एहसास, चीजों के जाय होने का एहसास, अपनी बदनीयती का एहसास, अपने तकबर का एहसास, अपनी इस बात का एहसास कि मेरे जज्बे खराब गलत हो रहे हैं। बस एहसास और ईमानदारी, इसी का नाम तो खिदमत है, और किस चीज का नाम है? जब ये दो चीजें आएंगी आपकी नस्लों में अल्लाह तवंगली इज्जत दौलत देगा। जब यह दो चीजें आएंगी, मैं अपने बड़ों के मजारात पे जाता हूं तो बैठता हूं, आप असुकत बहुत आंसू होते हैं। उस दिन मेरे पास कुछ लोग गए, मैंने कहा जाओ उधर जाके खड़े हो जाओ, मुझे तनहा छोड़ दो। पर उनसे बैठ के बड़ी तफसीली बातें करता और कहता हूं अल्लाह तू पहुंचाएगा, मैं कौन से कश्फ के दावे करता हूं। मैं अपने परदादा से बातें कर रहा था, मैं क्या आप 1919 में हज पे तशरीफ ले गए थे? मैं 19 में गया था, क्या मांगा आपने मेरे लिए? क्या मांगा था? मैं तो आलम अरवाह में था, मेरे तो वालिद ही पैदा नहीं होते, वो तो 1936 में पैदा हुए थे। पर मांगा क्या था आपने? फिर दादा से पूछता हूं आप हज पे गए थे? आप हज पे? दादा 36 में हज में गए थे, पर दादा 19 में हज में गए थे। क्या मांगा था? कितना मांगा था? आपकी दयानत, आपकी सदाकत, आपकी सच्चाई, आपका ईमान, आपका तकवा। मैंने बड़ों से सुना था, मैंने परदादा से पूछा कि जिस वक्त आपका वक्त आया था तहज्जुद पढ़ी थी? तहज्जुद पढ़ के अपने अंगूठे पांव के खुद बांधे थे और हाथ सीधा किया था और किबला रुख लेके के पर चले आए थे। और मैंने उससे अर्ज किया आज मैं समझूं कि मैं बड़ा आदमी बना फिर रहा हूं, मेरी शोहरत है तो ये मेरा धोखा होगा, फरेब होगा, ये मेरे ख्याल का खोट होगा, मैं जो कुछ भी हूं आपकी तो हो जाऊ। आपकी तवंगरियों से हूं, आपकी मखलूक के साथ खैरखाइयों से, पूरी जकात पूरा उश्र देने से हूं, सदका खैरात और अल्लाह की मखलूक के साथ खैरखाई के जज्बे और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ बुलाने की वजह से हूं। दादा से भी बातें करता हूं, दादी से भी, पर दादा से भी, अम्मा से भी, अब्बा से भी। याद रखिएगा ये इतने बड़े मजमे, इतना बड़ा निजाम चलाकियों से नहीं आता। किससे? चलाकियों से, शातिर होने से, शार्प होने से, फुर्तियों से। मैं मैनेजमेंट में बहुत कामिल हूं, सच पूछे मैनेजमेंट जिम्मेदारी जरूरी है। जैसे मैं कहा करता हूं मेहनत लाजिम है, पर मेहनत पे फैसले जरूरी नहीं कि जो मेहनती हो फिर वो मालदार हो जाएगा, जो मेहनती हो वो खुशहाल हो जाएगा। मेहनत लाजिम है पर मेहनत पे फैसले जरूरी नहीं। अब अपनी नस्लों को फकीर बना के ना जाना। मेरे बड़े अपनी नस्लों को फकीर बना के नहीं गए, उनकी जिंदगी में कुछ चीजें थी ऐसी जो मैं अक्सर बताता हूं, आज भी बताई है। वो चीजें थी नस्लों की चीजें थी। 1919 में, 2019 पे हज पे गया, 20 में ना जा सका, हालात ऐसे थे। 19 में जाके मुझे बहुत रोना आया कि मेरे परदादा यहां बैठे होंगे, यहां दुआ मांगी होगी, कितनी मशक्कतों का हज किया होगा 1919 का। तक हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हाजी साहब के पास गए तो आपने पूछा, मौलवी खलील अहमद मदीना जाना है हजरत, लाजिम जाना है। फरमाया उलमा ने तो रुख्सत दे दी है, काफले लूट लेते हैं, बंदों को मार देते हैं, तो व्यक्ति जैसी आपकी मर्जी हो। उसने कहा हजरत मार दें, काफले लूट लें, बद्दू पर मदीना जाना है। ये हालात थे। कहीं ऐसा ना हो हमारे दरवाजे पे भी कुछ झंडा खड़ा हो जाए जिस पे फक्र 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 लिखा हो। ये नब्बास थे, हकीम थे, मौलिज थे, दुनिया के बड़े डॉक्टर थे, अल्लाह के वली हजरत दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह। ये उनकी बातों का कुछ मैंने मफहूम अर्ज किया है, उनकी बातों का कुछ मफहूम अर्ज किया। बस इन चीजों को दिल की दुनिया में आबाद रखते रखते जिंदगी का सफर तय करना है। इन चीजों को दिल की दुनिया में आबाद रखते रखते जिंदगी का सफर तय करना है। अगर कहीं गिर पड़े तो उठ के कपड़े झाड़े, इस्तिगफार करें, पर सफर नहीं छोड़ना, सफर नहीं छोड़ना। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, इखलास का सदा जरिया बने। दो तीन खिदमतें हैं, अजवेरी महल की खिदमत 7 मार्च तक है, लिख लेना। 7 मार्च के बाद आप कहो कि आपको खिदमत में कोई हाथ लगाने दे, कोई नहीं लगाने देगा। क्यों? इंशाल्लाह 7 मार्च के बाद इतना मजमा वहां आएगा आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। 7 मार्च से पहले हजवेरी महल की खिदमत है, मिट्टी हो जाऊं, अपने आप को वहां खपा दो। इस वक्त खिदमत वालों की हिम्मत और हौसले वाले खिदमत वाले 2 दिन के बाद वापस भाग आए, नहीं, हिम्मत हौसले वाले वहां खिदमत वालों की चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने गुजारे, अशद जरूरत है, आखिरी अशद जरूरत है। तेजी से इंतजाम हो रहे हैं अल्लाह की मखलूक को फैज पहुंचाने, मुस्तनद आमाल देने के, बहुत बहुत ज्यादा मिन्नत, हिम्मत और मेहनत हो रही है। आप जैसे कोई जिंदा तो लोग चाहिए वहां, 100-200 वहां बिस्तर अपना ले जाए, डाल दें, लंगर सादा कुशादा वहां अल्लाह दे देगा। कुछ पागल दीवाने बुनियादें बन जाए, दुनिया आएगी, फैज पा जाएगी, हमारा नाम ही कोई नहीं लेगा, पर जन्नत के दरवाजों पे सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ होगा। और फिर सिर्फ वो नहीं, दुनिया में अल्लाह रिस्क, इज्जत, दौलत, बरकत के दरवाजे खोल के दिखाएगा। मैं हाथ नहीं खड़े करवाता, बस अज्म होता है जो उड़ाया जाता है, अज्म होता है जो वहां की हल्की फुल्की नागवारियों को कहता है कोई बात नहीं। दुनिया में कितनी नागवारियां देखे थे, क्या मंजिल जॉब कारोबार जिंदगी छोड़ी थी, क्या भागे थे क्या? मुझे तो 100-200 अफराद चाहिए जो हजवेरी महल में जाएं और वहां की खिदमत को अपने लिए सादत समझे, मखदूम बन के ना जाएं, खादिम बन के जाएं, खादिम। मुझे ऐसे دیوانے مستانے چاہیے، ایسے دیوانے مستانے چاہیے، ایسے چاہیے. تیار ہے؟ ڈھیلا ڈھالا انشاءاللہ. عزم کے ساتھ وہاں اپنا کچھ کھپا دے، وہاں چندہ نہیں چاہیے، بندہ چاہیے. ایک آئے صاحب مجھ سے کہنے لگے، میرا ابا کہتا ہے وہ اس پیر سے بچ کے رہتا. صاحب بابا ابے کو بھی ساتھ لے آیا، بہت پرانی بات، اس پیر سے بچ کے رہنا، میرا پیر چندہ لے کے جان چھوڑتا، یہ بندہ لیتا ہے خطرناک ڈٹ ہے. ان کے پیر صاحب تھے، نذرانہ شکرانہ جو ہوتا ہے دیتے ہیں، تھپکی دیتے تھے بس. وہ کہتے ہیں یہ چندہ نہیں لیتا، یہ بندہ لیتا ہے، بڑا خطرناک ہے، بندہ لیتا ہے چندہ نہیں لیتا. پر یقین جانیے، اس بندے نے تو جنت کی ہواؤں میں، اور بندے نے تو دنیا آخرت کی راہوں میں عزتیں دولتیں پانی ہیں، چندے نے کہاں پانی ہے. تو فیصلہ کر لے، کر لیا. اچھا اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، بہت توجہ سے ذرا مراقبے کا طریقہ مجھے دیکھتے ہوئے خاموشی سے سن لیں، مجھے دیکھتے ہوئے خاموشی سے سن لیں، مجھے دیکھتے ہوئے خاموشی سے سن لیں. ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے. کس کی عبادت ہے؟ دل کی عبادت ہے. اصل دل ہے. قبر میں کون بولے گا؟ موت کے وقت زبان یا دل؟ کلمہ دل. زبان دبند ہو جائے گی، دل کلمہ بولے گا. خاتمہ ایمان پہ زبان یا دل؟ ایمان عقل میں ہوتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے یا دل؟ خیر کے جذبے عقل میں ہوتے ہیں یا دل؟ روح روحانیت جسم کے کس حصے میں؟ نور دل میں، دل میں، دل میں. اس دل کو مراقبے قربانی کے ذریعے روشن کرنا، اس دل کو، اس دل کو مراقبے اور قربانی. اور بعض اوقات کوئی قربانی کی صورت مل جائے، جیسے استاد جی کو ملی، بدھ کے دن ماشاءاللہ یہ ذمہ داریاں ہوں گی، جمعرات کی رات ان کی ساری ڈیوٹی ہوگی، سب ان کے معاون ہوں گے، اور سارا نظام ان کے ذمہ ہوگا، خود بنفس نفیس موجود ہوں گے. مہینے کے بعد باری آتی ہے، اب تو ویسے ہی 2 مہینے کے بعد آئے گی، فروری میں نہیں ہے، مارچ کے کس تاریخ میں ہے؟ او کہاں چلا گیا دم 21 مارچ کا، موسم بھی بدل جائے. تو اس دل کو ہم نے روشن کرنا ہے قربانی کے ذریعے اور مراقبے کے ذریعے. دو لفظ یاد رکھیے گا، قربانی کے ذریعے اور قربانی، اور خدمت میں آنے والی قربانی حالات، عبادت میں آنے والی قربانی حالات، اور مراقبے کے ذریعے اس دل کو روشن کرنا. آئے ہم بیٹھ کے دل کو روشن کرتے ہیں. ترتیب یہ ہوگی، آپ تصور کریں گے عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا ہے. عرش الہی سے نور کس پہ آ رہا؟ میرے دل پہ آ رہا. اور میرا دل، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. بس ڈوب جائیں گے، تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، باقی اپنی تنہائیوں میں اپنے مقام پہ اس کی مشق کریں، بار بار مشق کریں. پہلے عادت بنے گی، پھر ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بس بن مانگے عطا فرما, دل کی دنیا بادشاہت کر دے, جذبوں کو, نظروں کو, کیفیتوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما, لالچ تمے سے بچا, ایمان اخلاص اخلاق کامل عطا. بس سب کی آمین کو قبول فرما, دنیا کے جس کونے میں بیٹھے تیری بندیاں اور بندے ان سب کی آمین قبول فرما, حجویری محل کی خدمت کے جذبے سے سرشار لوگوں کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا. آج بنیادیں ہیں اس جذبے کی, کل کو خدمت پکڑے بھی نہیں ملے گی پچھتائیں گے, اے اللہ اس خدمت میں ہمارا حصہ ملا دے, اس خدمت میں ہمارا حصہ ملا دے, اس خدمت کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کرنے والا بنا دے. محروم نہ فرما, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم.